हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो आज के इस 25 अप्रैल के रविवार के दिन स्नेह मिलन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आप सवेरे इतवार का बहुमूल्य आराम का समय निकाल कर आप यहाँ पर आए हैं, इसलिए आप सबका धन्यवाद है। और मुझे बताया गया है कि ये जो पवित्र महीना है अधिक मास पुरुषोत्तम मास के बारे में आपको कुछ बताएं। भगवान के ऊपर जो विश्वास है ये हर एक का एक निजी क्या कहते हैं उसको वॉलंटरी बात है। स्वेच्छा से हम भगवान को मान सकते हैं और स्वेच्छा से हम उनको नहीं भी मान सकते हैं। तो श्रद्धा जो शब्द है, श्रद्धा इसकी व्याख्या है कि जो सत वस्तु को धारण करता है उसको श्रद्धा कहते हैं। सत वस्तु का मतलब क्या है? जो चिरंतन है, जो नष्ट नहीं होने वाली है, समय के प्रभाव के साथ वो नहीं नष्ट होती है, चिरंतन रहती है, अमर रहती है, हमेशा के लिए प्रस्तुत है हमारे लिए, वो वस्तु है भगवान। किसी कोई व्यक्ति उनको अल्लाह कहता है, कोई व्यक्ति उनको यहोवा कहता है, कोई उनको बुद्ध कहता है, कोई व्यक्ति परमात्मा कहता है, लेकिन है तो वो एक ही व्यक्ति जो चिरंतन है, शाश्वत है। सारी दुनिया नष्ट होने के पश्चात भी वो एक ही व्यक्ति जो है वो रहती है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि सृष्टि के पहले, सृष्टि निर्माण होने के पहले और सृष्टि के मध्य में जब सृष्टि चल रही है और सृष्टि का जब विनाश होता है उसके बाद भी एक व्यक्ति कायम रहती है, वो है भगवान। हाँ, और हम सब उसी भगवान के चिरंतन अंश हैं। ऐसा नहीं कि केवल इस जीवन के लिए हमारा अस्तित्व है। जैसे भगवान चिरंतन है, हम भी चिरंतन हैं, हम भी शाश्वत हैं, हम भी परमानेंट हैं। इसलिए भगवान के निर्माण में हम सब लोग शरीर धारण करके जी रहे हैं। फर्क केवल इतना है कि हम भगवान को, उनके धाम को छोड़कर इस दुनिया में आए, यही डिफिकल्टी बस, और कुछ नहीं। हम सब हमेशा के लिए उनके बालक हैं, लेकिन किसी मनहूस घड़ी में, दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी में हमने तय किया कि उनको नहीं सेवा करने, हम अपनी सेवा करेंगे, हम अपने लिए जिएंगे, इंडिपेंडेंट से जिएंगे। हाँ, क्यों उनके लिए भागे पीछे, उनके क्यों सेवा करें, हम अपनी सेवा करेंगे या हमारे लोगों से सेवा करवाएंगे। उनको भूलकर, उनको छोड़कर, उनसे विभक्त होकर हम आनंद लेने का प्रयास करें। इसी दुर्घटना समय कारण हमको भगवान के धाम को छोड़कर इस भौतिक दुनिया में आना पड़ा और इस शरीर को धारण करना पड़ा। इस शरीर को हम इतना गौरव करते हैं, इतना सराहते हैं, उसको सजाते हैं, उसको भोग लेना चाहते हैं, सुंदर रखना चाहते हैं उसको, उसको इतना प्यार करते हैं। वो शरीर जो है वो एक दिन मरने वाला है, 100% निश्चित बात है। वो शरीर कुछ समय के लिए रहेगा, कुछ समय के लिए बड़ा हो जाएगा, शरीर से वृद्धि होगी उसकी कुछ समय के लिए, उसके बाद में उसके तरफ से कोई अन्य शरीर उत्पन्न होंगे। हाँ, और कुछ समय के बाद बूढ़ा हो जाएगा शरीर और यथावकाश मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये आत्मा के लिए बड़ी आनंद की स्थिति नहीं है, क्योंकि आत्मा क्या सोचती है हमेशा, मुझे परमानेंट आनंद प्राप्त हो जाए। हम सब लोग किस खोज में हैं? चिरंतन आनंद के खोज में हैं। हम टेम्पररी आनंद में लेते हैं, लेकिन टेम्पररी आनंद में हमको आनंद नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि वो शुरू होता है और समाप्त हो जाता है, फिर नया आनंद खोजते हैं। यही हमको बताता है, ये प्रूफ है कि हमारा स्वरूप जो है वो चिरंतन है और हमको भी चिरंतन वस्तु भी सही समाधान प्राप्त होता है और हम पर असीम करुणा करते हुए भगवान अलग अलग अनंत योजनाएं बनाते हैं, जिसके माध्यम से खोए हुए हम जीव पुनः उनके पास में चले जाएं। हाँ, जैसे आपके घर में जो कोई बालक है आपके बात सुनता नहीं है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर पिक्चर देखता है, फिर पैसे उड़ाता है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, कहीं घूमने जाता है, कुछ करता है, नशा करता है, आप लोग उसको डांटेंगे, फटकारेंगे और नहीं सुनेगा, एक दिन घर से बाहर निकाल देंगे। अगर आपको शराब पीना है, ड्रग्स लेना है, ये करना है, वो करना है, इस घर में आप रह सकते नहीं हो, चले जाओ यहाँ से, निकाल लेते हैं। लेकिन उसको निकालने का कारण क्या रहता है? सुधारने के लिए, कुछ उसको दंड देना चाहते हैं, आपको सुधारना चाहते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि इच्छा आपको अच्छी लगती है बच्चा को बाहर निकालने के लिए, इसलिए आप मन की इच्छा से उसको बाहर निकालते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बाहर निकालने के पश्चात भी किसी नाना को, किसी काका को, किसी फ्रेंड को भेजते हैं, जाओ जरा उसको पूछो क्या हो रहा है, क्या खा रहा है, वो कहाँ रहता हुआ है, क्या अवस्था है उसकी, क्या कुछ दुबला पतला हो गया, क्यों काला हो गया सूरज की रोशनी से, पूछताछ करते हैं, क्योंकि उस पर प्रेम करते हैं वो। हाँ, इसलिए उसका क्षेम कुशल जानना चाहते हैं और कोशिश भी करते हैं कि किसी प्रकार से उसको वापस लाया जाए। क्या वो सुधर गया है क्या, उसको बताओ, पापा उसका इंतजार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप सिगरेट दारू छोड़ दो, फिर घर में लौट के आओ, फिर आनंद से चैन से रहो। बेटा बोलता नहीं, हम आएंगे, पिताजी ने हमका अपमान कर दिया है, अभी हम भूखे मरेंगे, लेकिन घर वापस लौट के नहीं आएंगे। इसको क्या कहते हैं? मूर्खता कहते हैं उसको, है ना। इतना अहंकार करके फायदा क्या है, नुकसान किसका है उसके अंदर। लेकिन कहेंगे कि पापा कितने दयालु हैं, मैंने उनका इतना नियम तोड़ा, उनके बताए हुए अच्छे बात को तोड़ दिया मैंने, और फिर उन्हें घर से बाहर निकाला, फिर भी वो किसी किसी को भेज रहे हैं मेरे पूछताछ करने के लिए, बुला रहे हैं आ जाओ बेटा आ जाओ। लेकिन शराब छोड़े बिना उसको घर में एंट्री नहीं मिलेगी, इतनी बात निश्चित है। ऐसा नहीं कि आ जाओ बेटा घर में आके पियो, घर में आके दोस्तों को लेके आओ और सब मिलके शराब पियो घर पे, ऐसा नहीं बोलेंगे वो। घर का नियम वैसा ही रहेगा, लेकिन कोशिश करेंगे लाने के लिए। उसी तरह से हमने भगवान को छोड़ दिया है और इस दुनिया में भोग लेना चाहते हैं, फिर भी भगवान अलग अलग प्रकार से योजना बनाते हैं कि हमको वापस बुलाने के लिए, आओ फिर लौट के चले अपने पुराने घर में, अपने ओरिजिनल घर में। हाँ, वो क्या क्या योजना है? सबसे पहले तो वो अपने नाम में अपने आप को अर्पण कर देते हैं। चलो ये गली के लोग क्या कर सकते हैं, ना इनके पास ज्ञान है, ना इनको तपस्या करने की प्रवृत्ति है, ना निश्चय है, दृढ़ निश्चय नहीं है, सद्गुण नहीं है। हाँ, सब दुनिया में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कर भी क्या सकते हैं, ना यज्ञ कर सकते हैं, ना ध्यान कर सकते हैं, ना संन्यास ले सकते हैं, ना तपस्या कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं अपने सारे गुणों को, सारे व्यक्तिमत्व को, सारे शक्तियों को मेरे नाम के अंदर अर्पण करके इनको प्रस्तुत करूंगा। फिर ये मेरा नाम का जप करेंगे और केवल नाम का जप करके ही मेरे सानिध्य का अनुभव करेंगे, मेरे अस्तित्व का, मेरे पास होने का अनुभव करेंगे और मुझे प्राप्त करेंगे। और कहते हैं कोई नियम का जरूरत नहीं है, कभी भी आप जप करो, कोई छोटा बड़ा बीमार आदमी, अच्छा भला, धनी गरीब, सुंदर कुरूप, हाँ पढ़ा लिखा अनपढ़, कोई भी व्यक्ति हो वो नाम ले सकता है, बालक हो छोटा सा वो भी नाम ले सकता है। यहाँ तक कि अगर आप कुत्ता बिल्लियों को सिखाएंगे तो वो भी कीर्तन में नाच सकते हैं, ये हमने देखा हुआ है। हाँ, तोते से बुलवा सकते हैं, कुत्ता बिल्ली को नचा सकते हैं भगवान के कीर्तन में, ऐसा बना के दिया है, आसान एकदम। हाँ, कोई कह नहीं सकता कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूँगा ऐसे बताएंगे, लेकिन मैं करूँ कर सकता नहीं ऐसे बता नहीं सकते। फिर वो शास्त्र भेजते हैं, उनके क्या विचार है हमारे बारे में, वो मैनुअल भेजते हैं शास्त्र के रूप में, ग्रंथ बोलते हैं उसको, कोई बाइबल है, कोई कुरान है, सब भगवान के वचन है। फिर संतों को भेजते हैं, जो उनके खास भक्त हैं, जो उनके विश्वासु हैं, उनको अपने घर से यहाँ भेजते हैं, जाओ भाई उनको जरा बताओ कि हम चाहते हैं कि आप लौट के आए। संत आकर भगवान का विचार संदेश आपको पहुंचाते हैं, फिर अपने धाम के रूप में प्रकट होते हैं, अपने पवित्र स्थान के रूप में प्रकट होते हैं, बोला आओ मेरे जगह पर आओ जहां पर मैं जन्म लेता हूं। स्वयं आते हैं अवतार लेकर, लीला करते हैं, बालक बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, उपदेश करते हैं, राक्षसों को मारते हैं, संतों का उद्धार करते हैं और उस जगह को पवित्र बना देते हैं। कहते हैं आप आ जाओ, इस पवित्र जगह का लाभ लीजिए, लाभ ले लो, यहाँ पर आते ही आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, यहाँ के नदियों में स्नान करते ही आप पवित्र हो जाओगे। हाँ, हमारे लिए वृंदावन मथुरा है, इस्लाम धर्म में मक्का मदीना है, क्रिश्चियन धर्म के लिए जेरूसलम है, जॉर्डन रिवर है, इस्लाम में जमजम रिवर है, हमारे लिए गंगा नदी है, क्या नहीं बनाया उन्होंने, हर तरफ के आदमी के लिए, हर तरह के आदमी के लिए व्यवस्था बना के रखी है, खाली हमको जाना और लेना है बस। हाँ, ऐसे में आपको 50 चीज़ और गिना सकता हूँ, क्या क्या उन्होंने किया हमारे लिए। जिस चीज़ का आज मैं वर्णन करने जा रहा हूँ वो भी ऐसी एक वस्तु है, समय, हाँ एक समय का प्रभाव होता है अपने साथ में। सवेरे का समय एक प्रभाव होता है, दोपहर दिन में दूसरा प्रभाव होता है, रात में तीसरा प्रभाव होता है, होता है कि नहीं। सवेरे आदमी जब भजन करने के मूड में शांत रहते हैं, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं करते, दोपहर दिन में पैसा कमाने का कार्य करते हैं, कहीं से बिजनेस किया जाए, काम किया जाए रोटी कमाने के लिए, रात होते ही जो गुंडा लोग होते हैं वो एक्टिव हो जाते तुरंत, उनका नशा पानी, बलात्कार, रेप, जो लूट लूट मार करना है उनको कुछ करना है, वो रात के लिए, रात में उनका एक्टिविटी बढ़ जाता है, और दिन में वो लोग सो जाते हैं। और संत लोग सुबह उठते हैं 3 बजे और जप करते हैं, तब राक्षस लोग सो जाते हैं। समय का एक प्रभाव होता है। तो दिन का मैंने बताया आपको, फिर अगर 15 दिन में कहा जाए तो एकादशी का दिन आता है, 2 दिन आते हैं महीने में, आज एकादशी है भगवान की दया से। हाँ, तो एकादशी के दिन क्या होता है, हमारी चेतना जो है, हमारी जो भावना है भगवान के द्वारा अधिक पास होती है, उसका लाभ उठाने के लिए हम लोग उपवास करते हैं, अधिक जप करते हैं, अधिक सत्संग करते हैं और भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं। फिर महीने की बात आती है, तो महीनों में कई महीने बताए पवित्र महीने, जैसे इस्लाम में रमज़ान का महीना बताए, 30 दिन होते हैं उसके अंदर, 30 दिन वो दिन रमज़ान जो है वो भगवान के लिए बहुत प्रिय है, इसलिए सब जो भक्त हैं, बंदे हैं, वो उपवास करते हैं, उनके नाम से उपवास करते हैं उनके लिए। और क्रिश्चियन लोगों के अंदर दिसंबर में मेरे मदर मेरी का 27 दिन का व्रत होता है, वो मदर मेरी के लिए उपवास करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए अपनी तरफ से त्याग करते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में वैशाख का महीना है, मार्गशीर्ष का महीना है, कार्तिक महीना है, चतुर्मास्य है, कहा गया है कि अन्य महीनों से इन महीनों में सबसे अधिक शक्ति मिलती है भगवान के लिए, भगवान के पास पहुंचने के लिए, इसलिए व्रत को हम पालन करते हैं। 12 महीने में 4 महीने पवित्र माने गए हैं, हाँ, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, और कार्तिक 4 महीने से भी अधिक, कार्तिक सबसे बड़ा माना गया है, और कार्तिक से भी अधिक महत्वपूर्ण जो है वो ये पुरुषोत्तम मास माना गया है, इसको 13वां महीना कहते हैं, अधिक मास कहते हैं, सोमल मास कहते हैं। अब ये सब बात में आपको श्रद्धा होनी चाहिए, अगर श्रद्धा है तो सब बात में मतलब है कि नहीं। अगर श्रद्धा नहीं है तो आपकी माँ भी आपकी माँ नहीं है। क्या आपने कभी प्रूफ लिया क्या उससे, उसका ब्लड टेस्ट किया है कभी? हाँ, वे लेबोरेटरी में गए, चलो मम्मी लेबोरेटरी में चलो, आपका भी हम कहाँ DNA टेस्ट करेंगे और प्रूव करेंगे कि आप हमारी माता हैं। पापा से भी चले बोलो लेबोरेटरी में चलो, तब तक हम नहीं मानेंगे, ऐसा हम कभी कहते हैं क्या? अरे हमारी बड़ी उम्र निकल गई, यहाँ तक बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कभी माँ को पूछा क्या हमने कि आपका ब्लड टेस्ट क्या है, आप मेरे सच्ची माता है कि नहीं है, ऐसा पूछा नहीं हमने। क्या हम कभी बस में बैठते हुए माँ कंडक्टर को पूछते हैं कि आपका लाइसेंस कितना है, दिखाओ, आप शराब पे क्या बैठे क्या ऐसे ही बैठे, ऐसे पूछते हैं? जब ट्रेन में घुसते हैं तो ट्रेन को मोटरमैन को पूछते हैं क्या कि आप शराब पे के चला रहे हो, कि आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है? उनको पता भी नहीं मोटरमैन कहाँ बैठा है। लेकिन हम आराम से ट्रेन में बैठ जाते हैं, आप नहीं, हजारों लोग ट्रेन में घुस जाते हैं, कोई किसी मोटरमैन को पूछता नहीं आपका लाइसेंस दिखाओ, जब तक आपका लाइसेंस नहीं दिखाओगे तब तक मैं ट्रेन में पाँव रखूंगा नहीं, बोले मत रखो घर चले जाओ। कोई मतलब नहीं हमसे आपको। हवाई जहाज में हम बैठते हैं, कभी कैप्टन को मिलते हैं क्या कि आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है, कौन से कंट्री से आपने ये लाइसेंस लिया है पायलट का, हमारी जिंदगी आपके हाथ में दे रहे हैं हम, हाँ हवा अभी आकाश में, जमीन में नहीं। अभी आप गिरा दोगे समुंदर में तो क्या होगा हमारा, जब पूछते हैं हम लोग नहीं पूछते। होटल में जाते हैं, शादी में जाते हैं, कभी रसोई घर में जाके पूछते हैं क्या कि ये कुक को क्या बीमारी है, इसको एड्स है क्या, इसको कोई जानलेवा बीमारी है, इसको टाइफाइड हो गया है क्या, लेटरिन में जाने के बाद हाथ साफ धोके वो खाना बनाता है, ऐसे पूछते कभी? अच्छी तरह जिलेबी खाते हैं, फर्स्ट क्लास पनीर मटर खाते हैं, सब कुछ क्या क्या बनाया है देखते, अरे वो बढ़िया बढ़िया नाम लिखा है उधर, और वो खाते रहते हम लोग, फेथ है ना, श्रद्धा से खाते ना, कि इसमें खाने में विष है क्या, कोई गंदगी है, कोई बीमारी है, कोई कीटाणु है, देखते हैं क्या हम लोग को भी। तो जीवन में कितनी ऐसी गतिविधियां हैं जो हम लोग बिना सोचे और पूछे श्रद्धा से करते रहते हैं। हम जाते हैं पैकेट का फूड खरीदते हैं मॉल से, कभी सोचते हैं कितना दिन पुराना है, क्या बनाया उसके अंदर, किसने बनाया उसको, क्या कुछ कीटाणु का उसका दर्जा कितना है, कितने हम करोड़ों कीटाणु उसके अंदर है, कभी गिनते हैं हम लोग? नहीं गिनते हैं। ऐसे हम हजारों चीजें गिन सकते हैं जो हम बिना पूछे करते रहते हैं। लेकिन जहां तक भगवान की बात आती है, कहाँ है भगवान, अभी दिखा दो तो मानूंगा। अरे हम कहते हैं कि अमेरिका का प्रेसिडेंट है, आप बोले अभी मुझे उसको मिलाओ तो मैं मानूंगा कि वो प्रेसिडेंट है। लेकिन हर चीज हम इस तरह से समझते थोड़ी है, हम सुनते भी है किसी से, अमेरिका देश अगर इस दुनिया में है कि नहीं कैसा मानेंगे हम? जो लोग जा चुके हैं वहां से आए हैं वापस, उनके मिलेंगे हम लोग, बोलेंगे देखो ऐसे कंट्री में जाके आए, ये पासपोर्ट होता है ऐसा, ये वीजा होता है इसका, इस तरह का वीजा होता है, इसमें एंट्री मिलती है, फिर उसमें बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे देश हैं, उसके अंदर बहुत लोग रहते हैं यहाँ के वहाँ, वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट, और नाम बताएंगे उसके बारे में, फिर उसका फ़ोटो देखेंगे, फिर टीवी पर फिल्म देखेंगे उसकी, ये देश की, उसके प्रेसिडेंट को फिल्म में देखेंगे, तो आप विश्वास करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, ये सब झूठ है। जब तक उस प्रेसिडेंट को यहाँ खड़े नहीं करेंगे तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा कि वो देश अस्तित्व में है नहीं, ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते। अरे हम लोग कश्मीर में नहीं गए होंगे शायद, मैं तो अभी तक कश्मीर में नहीं गया हूँ, लेकिन बचपन से कश्मीर के बारे में सुनते आ रहा हूँ। मतलब है ना, वो हर चीज़ आंखों से देखने पर विश्वास करने योग्य नहीं होती, जो दिखता है वही है ऐसा मानना मूर्खता की बात है, क्योंकि आंख से भी श्रेष्ठ जो है कान है। बहुत सारे चीज़ हम कान से देख सकते हैं, सुनकर समझ सकते हैं, आंखों से देखकर जितनी चीज़ हम समझते हैं उससे करोड़ों गुना अधिक चीज़ें हम सुनकर समझते हैं। अगर कोई बच्चा SSC में पढ़ रहा है उसको कहेंगे कि 50 मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ से आपको MBBS कर सकते हैं, वहाँ से MD भी कर सकते हैं, उसके लिए एंट्रेंस है, बोले मैं जब तक कॉलेज को अपने आँख से नहीं देखूंगा तो विश्वास रखूंगा नहीं, तो वो मूर्खता की बात होगी ना। उसी तरह से ये जो भी भगवान ने दिया है हमारे लिए, कि हम कहेंगे भगवान का नाम उनसे अभिन्न है, भगवान का धाम उनसे अभिन्न है, और भगवान ने कहे हुए वाक्य सत्य हैं, भगवान का धाम अस्तित्व में है, अभी हम देख नहीं पा रहे हैं उसको, फिर भी वो है, भगवान भी है, उनको देख नहीं पा रहे फिर भी वो है, और उनको पाने की प्रक्रिया ये है, उनको अगर मिलना है, उनको अगर उनका सान्निध्य प्राप्त करना है तो ये प्रक्रिया फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, अगर स्कूल में जाना होगा तो भी कुछ फॉर्मूला फॉलो करना पड़ता है कि नहीं? अरे जाओ, माँ बाप को जाके इंटरव्यू देना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, फीस भरनी पड़ती है, लास्ट डेट है उसकी, किताब खरीदनी पड़ती है, टेस्ट होते हैं, फिर वो स्कूल में प्रवेश करते हैं। अरे सारे स्कूल में प्रवेश करने भी हमको प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है, कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। डॉक्टर बनना है तो भी एक सिस्टम है उसका, वो फॉलो करना पड़ता है, और भगवान को प्राप्त करना है कोई सिस्टम नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? लोग बोले नहीं कोई बात नहीं, मेरे पापा ने कहा था ये करो भगवान मिल जाएंगे, नहीं नहीं मेरे दादी ने ऐसा कहा था, हमारे में ऐसा नहीं है, हमारे में वैसा है, हम तो ये सब फॉलो नहीं करते, हम फल इतना ही करते हैं, हमको विश्वास है भगवान प्राप्त हो जाएंगे। मतलब दुनियादारी के हर काम में बहुत सिस्टमेटिक है हम लोग, लेकिन भगवान के बारे में बहुत अनसिस्टमेटिक है, वेरी नाइसली अनसिस्टमेटिक है कि नहीं? जो हमारे मन को लगता है वो हमारी भक्ति है, बस दैट्स इट, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं उसका, क्योंकि हम करना नहीं चाहते, हम उनको छोड़कर यहाँ पर भोग लेने के लिए आए हैं। लेकिन फिर भी वो अगर वो कह रहे हैं कि मेरे नाम में मैं हूँ, मेरे धाम में मैं हूँ, मेरे संतों की कृपा में मैं उपलब्ध हूँ, मेरे शास्त्रों के वचनों में मैं उपलब्ध हूँ, मुझे आप ऐसे ऐसे प्राप्त कर सकते हो, तो हमको विश्वास के साथ उसको स्वीकार करना चाहिए, कम से कम ट्राई करने के लिए तो विश्वास रखना चाहिए। जैसे हमको कोई कहेगा कि आप अगर 71 बस में बैठोगे तो दादर से शिवाजी पार्क पहुंच जाओगे, तो कम से कम आपको थोड़ा विश्वास रखे, ट्राई करना चाहिए उसको। हाँ, क्योंकि वो जो बताने वाला आदमी है, जो आपके पहचान का है, आप उसको श्रद्धा रखते हैं, तो उसकी कही हुई बात पर भी श्रद्धा आप रख सकते हैं ना, क्योंकि वो आपको जानता है, आप उसको श्रद्धा रखते हैं। उसी तरह से ये जो महीने हैं, रमज़ान का है या दिसंबर का है या कार्तिक का है या अधिक मास का है, श्रद्धा है तो सब आपके लिए उपलब्ध है, श्रद्धा नहीं है तो जीरो है आपके लिए, कुछ वैल्यू नहीं उसकी, कोई रिश्ते की वैल्यू नहीं है अगर आपको श्रद्धा नहीं है तो, कोई मित्र नहीं है, कोई माता पिता नहीं है अगर श्रद्धा नहीं है तो। श्रद्धा हमारे जीवन का बेस है, ये जीवन का मूलभूत सपोर्ट है हमारा, जिस पर हम अपना जीवन चलाते हैं। अगर हम रोटी और दाल खाएंगे, कहेंगे कि रोटी दाल खाएंगे तो आपको शक्ति प्राप्त होगी, हमने कभी देखा ना अंदर का क्या होता है, हमारा कंट्रोल कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ डालने में हमारा कंट्रोल है, एक बार निकल लिया तो उसको वापस निकाल नहीं सकते हम लोग, और अंदर जाके क्या क्या हो रहा है उसका, कैसे उसको हजम हो रहा है हम नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी वो खाने के बाद शक्ति जरूर मिलती है। हाँ, अच्छा लगता है, थोड़ा सा चुस्त लगता है। उसी प्रकार से ये भगवान के दिए हुए हमारे लिए कृपा है, तो ये जो अधिक मास है, ये सब महीने व्यक्ति हैं, एक्चुअली ये सब भगवान के भक्त है, वो समय के महीने के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। तो ये जो अधिक मास का विशेषता ऐसा है कि इस अधिक मास में कोई भी मटेरियल प्रॉफिट नहीं मिलता है, बहुत सोचने की बात है, समझ लेना इस बात को, ये जो महीना है इसके अंदर कोई भी आप कार्य करेंगे, जो गृह प्रवेश का मुहूर्त नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर दुकान खोलने का मुहूर्त नहीं है, शादी के मुहूर्त नहीं है, हाँ मालूम है ना आपको, ये महीने में कोई मुहूर्त नहीं निकलेगा, आपको बोला आप शादी करने, नहीं ये महीने में नहीं, 14 मई के बाद में मिलेगा आपको, क्योंकि किसी भी कर्म को फल देने वाली प्रक्रिया इस महीने में उपलब्ध नहीं है, कोई प्रॉफिट है नहीं उसके अंदर, तो फिर क्या है, इसलिए इसको कर्मकांडी लोग जो है ना, कर्मकांड करते हैं ना उनको, वो लोग इसको मल मास कहते हैं, मल मतलब डर्टी, मतलब गंदा, मल मास को कहते हैं क्योंकि इस महीने में कुछ भी कार्य करो, यज्ञ करो, हवन करो, कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए वो गंदा महीना है। क्योंकि जो लोग केवल प्रॉफिट का सोचते हैं उनके लिए ये गंदा महीना है, लेकिन भक्त लोग जो है भगवान के वो क्या सोचते हैं, उनके लिए भी मल मास कहते हैं उसको, लेकिन उसका अर्थ क्या है कि सारे मलों को नष्ट करने वाला मास है ये क्योंकि केवल आध्यात्मिक लाभ इस महीने में मिलता है। आप जो भी कुछ करेंगे उसका कोई भौतिक लाभ नहीं मिलेगा आपको, केवल आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। लेकिन फिर भी ये मल मास जो है दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गया और रो के बोला कि सब लोग मुझे धुटकार रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं मुझे, कुछ हमारे पर कृपा कीजिए, हम आपको अपना जीवन समर्पित करते हैं, आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। तो भगवान विष्णु उसको भगवान कृष्ण के पास लेके गए। तो आप बोलेंगे अरे विष्णु और कृष्ण अलग है क्या? विष्णु जो है वो कृष्ण के अवतार हैं, कृष्ण का स्वरूप है, मूल जो है वो श्री कृष्ण है। तो कृष्ण भगवान ने उसको शरण दे दी और कहा कि आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास हो जाएगा। इसका वर्णन स्कंद पुराण पद्म पुराण में आता है, आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास हो जाएगा और जो भी व्यक्ति इस महीने में कोई व्रत रखेगा और पूर्ण करेगा उस व्रत को, उस जीवन के अंत में मेरे पास लौट के आएगा। इतना बढ़िया वरदान दिया उसको, तुम्हारे समय के अंदर मतलब जो 30 दिन का समय है उसके अंदर कोई भी व्रत करेगा, कोई मुझे मेरा ध्यान करेगा, व्रत क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे, तो व्रत की पूर्ति के साथ में इस जीवन के अंत में वो मुझ तक पहुंचेगा, मेरे धाम में निवास करेगा। इस महीने के अंदर कोई पवित्र स्थान में जाकर नदी में स्नान करेगा तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे, जन्म जन्मांतर के, ऐसा नहीं कि इस जन्म के, पिछले अनंत जन्मों के पाप जो जमा किए हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे, जाने अनजाने में जो इकट्ठा किए हैं जो हमारे लिए को भोगना पड़ेगा वो सब नष्ट हो जाएंगे। इस महीने में जो भगवान का नाम का जप करेगा उसको आम तौर से अलावा 1000 गुना लाभ मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इस महीने में एक माला जप करते हो, एक तस्बीह पर अल्लाह का नाम लेते हो, अगर एक रोजरी पर जहोवा का नाम लेते हो तो आपको 1000 बार उसका लाभ मिलेगा। एक बार नदी में स्नान करोगे तो 1000 बार नदी में स्नान करने का लाभ मिलेगा। इसको कहते हैं ग्रैंड सेल। दुकानदार होते हैं, दुकानदार अपना माल बेचने के लिए कभी बोलते हैं एक शर्ट फ्री, एक लो एक शर्ट फ्री, एक शर्ट लो दो शर्ट फ्री, दिवाली के अंदर एक शर्ट लो 3 शर्ट फ्री क्यों करते हैं ऐसा? लोग अपना माल जल्दी जल्दी खरीदे इसलिए उसको सेल लगा देते हैं। ये भगवान का डिवाइन सेल है, वो चाहते हैं कि जीव उनके पास में आ जाए, इसलिए वो अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप से हमको अट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ये अधिक मास इसलिए दे दिया हमको, 3 साल में एक बार आता है ये। इस अधिक मास में अगर हम भगवान के नाम का जप करेंगे, अगर हम भगवान के शास्त्र को पढ़ेंगे, अगर भगवान के संतों के साथ में संग करेंगे, उनके विचार में समय बिताएंगे, अगर आप कुछ प्रिय वस्तुओं को छोड़ देंगे, जैसे आपको जलेबी बहुत पसंद है आप उसको त्याग करेंगे महीने के लिए, और अगर आप भजन करते भी हो रोज तो आप अधिक भजन करोगे, समझो हर चीज़ का 1000 गुना लाभ आपको मिलेगा। चाहे आप कोई भी हो, छोटे बच्चे हो, काले हो, गोरे हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, हाँ अमेरिकन हो, इंडियन हो, किसी धर्म के हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समय तो समय होता है ना, वो हर जीव पर सेम प्रभाव करेगा। अगर हम लोग रमजान के, मैंने सऊदी अरब में जब मैं था 2 साल मैंने वहाँ पर बिताए, मैंने पूरा महीने का रोज़ा किया है रमज़ान का, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं सऊदी अरब में हूँ और मेरे सारे कलीग्स रमज़ान को फॉलो कर रहे हैं तो मैं ऐसे नहीं समझूँ कि मैं हिंदू हूँ और मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे धर्म से खिलाफ है या हमारे धर्म में लिखा नहीं है, मैं अलग हूँ आपसे, ऐसे क्यों करना जरूरी है? अगर वो इंसान है उनको कुछ आध्यात्मिक लाभ हो रहा है और मैं भी इंसान हूँ मुझे भी आध्यात्मिक लाभ हो सकता है और मुझे वहाँ रहना ही है, तो क्यों ना उनके साथ में उनके संग में मैं करूँ। तो जैसे मोहम्मद साहब ने बताया है एकदम वैसे कुरान के वर्ड टू वर्ड रूप में मैंने 25 रोज़ा किया है और मुझे इतना आनंद हुआ उसके अंदर, इतना लाभ हुआ हृदय से। तो मैं समझा कि ये जो भगवान के द्वारा दिए गए धर्म है ना वो सब एक है, एक्चुअली एक प्रकार का उसमें संदेश दिया गया है, अलग अलग स्थिति में अलग लोगों को अलग शब्दों में दिया गया है, लेकिन उसका एसेंस जो है, उसका सार जो है वो सेम है। इसलिए आप देखेंगे कि हर धर्म में नाम जप को बताया गया है, हर धर्म में उपवास को बताया गया है। हाँ, किसी को घर में रोजा कहते हैं, किसी को फास्टिंग कहते हैं, किसी को उपवास कहते हैं, किसी को लंघन कहते हैं, लेकिन प्रिंसिपल एक ही है कि कुछ कुछ दिनों में अन्न से आपको वर्ज होना है ना। हर धर्म में लिखा है कि भगवान के धाम में जाना चाहिए, तो इस्लाम के लोग मक्का मदीना जाते हैं, हम लोग काशी बद्रीनाथ और वृंदावन धाम जाते हैं, है ना, और क्रिश्चियन लोग जेरूशलम जाते हैं, जॉर्डन नदी में स्नान करते हैं, लेकिन धाम में जाना सब में बताया है और शास्त्र सब में दिया गया है। हम क्या कहते हैं, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, मतलब क्या, जो भगवान ने कहा है वही धर्म है। तो कुरान क्या है, जो अल्लाह ने कहा है वही कुरान है, मोहम्मद साहब को उन्होंने पहाड़ पर बुलाकर सुनवाया पूरा, भगवान की स्वयं स्वयं भगवान ने सुनाया, और मोजिस को यहोवा ने स्वयं पहाड़ पर बाइबल दिया, और सब उसके जो अक्षर हैं दाउ शैल नॉट किल वो सब पहाड़ पर लिखे गए भगवान की कृपा से, और फिर मोजिस ने उसको जीसस क्राइस्ट को दिया और जीसस क्राइस्ट ने उसको प्रचार किया। तो प्रक्रिया सेम है ना, भगवान अपने भक्तों को प्रेरणा देते हैं और हम तक, हम जैसे आम आदमियों के लिए उनका संदेश पहुंचाते हैं। एसेंस सब सेम है, डिटेल्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो उसी तरह से ये महीना जो है इसमें जो भी ये व्रत करेगा, अगर इस्लाम का व्यक्ति इसमें अल्लाह बिस्मिल्लाह का जप करेगा और कुछ अन्न से फरे होकर थोड़ा तपस्या करेगा तो उसका भी उसको 1000 गुना लाभ मिलेगा। जैसे हमने 25 रोजा किया तो जो उनको लाभ मिला वो मुझे मिला, सेम थिंग, क्योंकि प्रिंसिपल सेम है। क्या होना चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए और डिवोशन होना चाहिए। अगर श्रद्धा और डिवोशन है तो सारे भेद नष्ट हो जाते हैं। हम केवल भेद करने में एक्सपर्ट रहते हैं, अरे आप साउथ इंडियन हो, अरे मैं तो नॉर्थ इंडियन हूँ, अरे आप गोरे हो मैं काला हूँ, अरे आप मैकेनिकल इंजीनियर हो मैं डॉक्टर हूँ, अरे आप मद्रास से हैं मैं महाराष्ट्र से हूँ, अरे मैं अमेरिका जाके आया हूँ आप वहाँ पढ़े नहीं क्या मैं यहाँ पढ़ा हूँ, इस तरह से अनेक अनंत भेद आप कर सकते हो। लेकिन समानता देखने में सही कौशल है। हमारे अंदर आपके अंदर समानता क्या है कि हम सब आत्मा हैं, उसको कोई रूह बोलेगा, कोई सोल बोलेगा, कोई आत्मा बोलेगा, लेकिन है वस्तु वही, वो हम सब लोग के अंदर है, हम सब लोग वही हैं, और हम सब लोग चाहे कुत्ता बिल्ली भी हो वो सब उसी परमात्मा उसी भगवान के अंश हैं। चाहे उस भगवान को अल्लाह के नाम पर पुकारो लेकिन वो एक व्यक्ति है जिसके हम सब बालक हैं। क्या हम कह सकते हैं कि भगवान केवल हरे कृष्ण लोगों के भगवान है, ऐसा कह सकते हैं? ये हमारे कृष्ण जो है वो केवल हरे कृष्ण डिवोटीज के भगवान है और किसी के भगवान नहीं? नहीं, हमारे भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि अहम बीज प्रद पिता, जितने भी जीव हैं वो सबका मैं पिता हूं। ऐसा नहीं बताया कि जो हरे कृष्ण मंदिर में जाते हैं उनका मैं पिता हूं। ना कुरान में वो कहते हैं कि मैं केवल इस्लाम को फॉलो करने वाले लोगों का अल्लाह हूं। वो ही जो अल्लाह है, वही जो यहोवा है, वही जो कृष्ण है, वो हम सबके पिताजी हैं, हम सब उनके बालक हैं। जब हम ये समझते हैं तो सारे भेद नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इस मल्ल मास को पुरुषोत्तम मास के रूप में नाम दिया गया, और फिर बहुत खुश होकर पुरुषोत्तम मास फिर लौट के आया लोगों के उद्धार के लिए। और क्या व्रत करना चाहिए, कैसे व्रत करना चाहिए? इसमें जो कोई व्यक्ति भजन नहीं करता है, समझो कोई आदत नहीं बनी है, कोई मौका नहीं आया, कोई अवसर नहीं मिला, उसको इस महीने में भजन आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। अगर कोई कहेगा आपको कि आज से 3 दिन के अंदर आपको 1 रुपया देने से 1 करोड़ रुपये मिल सकते हैं, तो आप कहेंगे मैं 4 दिन के बाद में जाऊंगा, मेरे को थोड़ी थोड़ा काम है, यहाँ घर में पेंटिंग चल रहा है, मैं 3 दिन के बाद जाऊंगा। तो मिल सकता है आपको? नहीं मिल सकता है। कुछ चीज़ का समय होता है, अगर एडमिशन लेना है, हाँ अगर आपको कुछ कार का डिस्काउंट लेना है तो उसका एक टाइम होता है, उसके अंदर आपको उसका बेनिफिट लेना चाहिए। आपकी इच्छा के अनुसार वो टाइम रुकता नहीं किसी के लिए, टाइम तो किसी के लिए रुकता नहीं है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो भारत का, अमेरिका का अध्यक्ष हो या हम आप हो, समय किसके लिए रुकता नहीं है। समय जा रहा है, हमको बूढ़ा बना रहा है, हमको हमारा उम्र बढ़ रही है, मृत्यु की ओर हम बहुत तेजी से और स्थिर गति से आगे जा रहे हैं। उस गति में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना समय जल्दी भागता है ना समय स्लो भागता है, वो अपने स्पीड से बराबर चलते रहता है, और उसका परिणाम हमारे ऊपर हम देखते रहते हैं। क्या परिणाम है उसका? हमारा जीवन धीरे धीरे वो समय लेके जा रहा है। लाइफ इज बींग टेकन अवे स्टेप बाय स्टेप रेगुलरली स्टेडिली। इसलिए उस समय को हमको कभी भी कम नहीं मानना चाहिए, कभी भी उसकी कीमत अमूल्य, मतलब उसका मूल्य समझना चाहिए। समय बहुत कीमती है, कितना भी धनी आदमी होगा तो वो करोड़ों डॉलर देखिए फिर एक क्षण भी वापस ले सकता नहीं हो। जो चाहिए पैसा ले लो, मुझे 10 मिनट वापस दे दो मेरे, नहीं मिल सकते। यू कैन नॉट बाय टाइम, किसी प्रॉपर्टी में हम टाइम बाय नहीं कर सकते। इसलिए समय जो है वो बहुत कीमती है, और अगर वो ऐसा समय है जो भगवान ने हमारे लिए छोड़ के दिया है स्पेशली कि इस समय के अंदर आप कुछ करोगे तो मैं आपको इसका इतना लाभ दूंगा, तो आपको उसी समय में उसका लाभ लेने का प्रयास करना पड़ेगा। देर इज नो कंसेशन, देर इज नो एक्सटेंशन। उस तरह से मृत्यु का भी ऐसा ही है, मृत्यु समय खड़ा होता है, हम नहीं बोल सकते मेरे को 5 मिनट दो, मैं 1-2-4 पेपर साइन करता हूँ फिर आपके पास आता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। जब समय आता है, जब घंटी बजती है, तो सब कुछ छोड़ के ऐसे ही ड्रॉप करके जाना पड़ता है उस समय पे। इसलिए समय का वैल्यू समझने का प्रयास करो। तो व्रत का कैसे करना चाहिए? सबसे पहले कहा गया कि इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, मतलब विवाहित आदमी भी हो तो स्त्री पुरुषों को इस समय दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आध्यात्मिक लाभ लेने का समय है, शरीर का भोग लेने का समय नहीं है। इसलिए उस समय जैसे ट्वेल्थ की एग्जाम आती है तो क्या करता है लड़का आपका, आप टीवी देखना बंद करता है, घूमने जाना बंद करता है, भेलपुरी खाने का टाइम पास बंद करता है, और कुछ बेकार की बातें नहीं करता, दिन भर अपना टाइम टेबल ऐसा बनाता है कि वो पढ़ाई करता रहे और अधिक से अधिक समय पढ़ाई करके एग्जाम की तैयारी करे। मतलब कुछ त्याग करता है ना कुछ पाने के लिए, कुछ ऊंचा वस्तु पाने के लिए कुछ छोटी वस्तुओं का त्याग कर देते हैं, और फिर बाद जब पास होता है तो छुट्टी में फिर सब घूमता है, समुद्र में किनारे में भेलपुरी खाता, सब कुछ करता है, लेकिन उस समय में वो उन प्रलोभनों को त्याग देता है, जो उसको अट्रैक्टिव चीज है उसको छोड़ देता है, कुछ उच्च प्राप्ति के लिए कुछ चीजें हम छोड़ देते हैं। उसी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन कहा गया है इसमें, और कहा गया है कि इस महीने के दौरान किसी को मन से उद्वेग नहीं करना है, मतलब गुस्सा नहीं करना है, किसी चीज पर त्रस्त नहीं होना है, अरे क्या हो रहा है, ऐसे क्यों वैसे क्यों, हरे कृष्णा। तो हमको ध्यान रखना है कि समय कीमती है, और जितना अधिक से अधिक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया जाए वो हम कर सकते हैं, तो इसलिए हमको शांत मन रखे, उद्वेग ना करते हुए अपने कार्य को करना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट बताई गई है कि इस महीने में किसी भी व्यक्ति का टिका नहीं करना चाहिए उसके ऊपर, मतलब डो नॉट क्रिटिसाइज, किसी पर निंदा नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर क्या कहते हैं उसको कमेंट नहीं करना चाहिए, देखो कैसा व्यक्ति है, क्या है, समझता नहीं इसको, किसी प्रकार की नेगेटिव बात किसी के विषय में नहीं करना चाहिए। हम लोग उसको कहते हैं हमारी भाषा में अपराध नहीं करना चाहिए किसी का, किसी को दुख पहुंचे ऐसे उसके बारे में गंदी बातें, बुरी बातें, निंदाजनक बातें नहीं करनी चाहिए, खास करके भक्तों की बारे में, वैष्णव अपराध कहते हैं उसको, हाँ भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान को भक्तों पर प्रति किया हुआ अपराध बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे आपको आपके बालक के प्रति कोई बुरा कर ले तो आप पसंद है आपको, आप बिल्कुल सहन नहीं कर सकते हैं, सुबह शाम रात दिन रात ये महीने में वो अगले महीने में ये पूरे जीवन भर में आपके बालक को कोई निंदा करेगा तो आपको पसंद नहीं है, ये शाश्वत सत्य है। ऐसा नहीं कि आज पसंद था कल पसंद नहीं है परसों पसंद था, ऐसा नहीं होता है, कुछ बातें परमानेंट होती है। उसी तरह से परमानेंटली भगवान को अपने भक्तों की निंदा सहन नहीं होती है, तो खास करके इस महीने में हमको भगवान के भक्तों की निंदा से बचना चाहिए। और भगवान के भक्त कौन है? जो उन पर श्रद्धा रखते हैं, जो उनके नाम को पुकारते हैं, जो उन तक पहुंचना चाहते हैं और अपने जीवन को उनके चरणों में रख चुके हैं उनको प्राप्त करने के लिए, वो भगवान के भक्त हैं। और जो किसी भगवान के भक्त की निंदा नहीं करते वो भगवान के भक्त हैं, ये व्याख्या है भगवान के भक्त की, जो उनके नाम को पुकारते हैं, उन पर श्रद्धा रखते हैं और उनके अन्य भक्तों की निंदा नहीं करते हैं, उसी को भगवान का भक्त कहते हैं। और इस महीने में सूरज उगने के पहले उठकर स्नान करना चाहिए, और उसके उसी समय में सूरज उगने के पहले ही भगवान के भजन को आरंभ करना चाहिए, उनके नाम के जप को, उनके पुकारने में, उनकी प्रार्थना में, उनकी आरती उजारने में, ये सब सुबह के पहले होना चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए। उसके बाद में खाने पीने के बारे में कहा गया, जितना हो सके उतना अच्छे अच्छे व्यंजन खाना छोड़ देना चाहिए, सिंपल भोजन करना चाहिए, हो सके तो फलाहार करना चाहिए, एक ही बार अन्न खाना चाहिए अगर हो सके तो, हाँ सब ये वॉलंटरी है, जितना आपको हो सके उतना आपको करना है, किसी के बस में अगर है तो उसको फलाहार करना चाहिए, अगर नहीं बस में है तो एक बार अन्न खाकर बाकी दो बार फलाहार करना चाहिए, यानी कि जबान पर काबू रखने का प्रयास करना चाहिए। हाँ वो आप क्या कर रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना आप कोशिश कर रहे हो उसको थोड़ा सा छोड़ने का, थोड़ा सा तपस्या करने का, वो प्रिंसिपल है इसके अंदर। आप कहेंगे अरे आप तो बिल्कुल फला कर रहे हो, मैं तो सब कुछ खा रहा हूँ, एम क्या है उसका? कि ये सब कम करके हजम करने की शक्ति जो बचेगी वो शक्ति बचाकर क्या करना है हमको? भगवान के बारे में ध्यान करना है। उपवास क्यों करते हैं हम लोग? उपवास का मतलब है उप और वास, दो शब्द है उसके अंदर। उप का मतलब नजदीक पास में, और वास का मतलब है रहना। उस दिन हमको अन्य दिनों से भगवान के अधिक पास रहना है। उसमें जलेबी छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, मतलब जलेबी खाकर भी अगर आप उनके पास रह सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। जलेबी खाने के बाद नींद आती है, भगवान को भूल जाते हैं, हम सो जाते हैं बिल्कुल। तात्पर्य क्या है? उपवास भी हम करते हैं, अगर कोई अन्न छोड़ते हैं, कोई व्रत करते हैं, तो उसका उद्देश्य है कि हम भगवान के भावना से अधिक पास रहे, उनसे विचार से उनके पास में रहे। और जब भगवान के विचार से पास रहते हैं उनको क्रोध नहीं आता है, वो विचलित नहीं होते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं। हाँ ये भगवान के पास रहने का प्रूफ है। अगर आप भगवान के पास नहीं है तुरंत आपको गुस्सा आ जाएगा, कोई आपको ये बोलेगा ये नहीं वो चाहिए ये चाहिए, मन में इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो हमको उपवास में रहना है इस महीने में, मतलब जो प्रिय चीज आपको भगवान के अधिक पास रखेगी उस व्रत को करना है, उसी को व्रत कहते हैं। इस महीने में कहा गया है कि आप कम से कम 2-3 दिन क्यों ना हो पवित्र स्थान में जाना चाहिए। अब यहाँ से नजदीक सबसे पवित्र स्थान है नासिक, यहाँ पर गोदावरी नदी है, भगवान रामचंद्र के कई स्थान है, सीता की गुफा है, पंचवटी है, गोदावरी नदी है, हाँ त्र्यंबकेश्वर पर्वत है जहाँ पर भगवान ने लीला किया है, फिर वृंदावन धाम है, फिर श्रीरंगम है या द्वारका है या मथुरा है या बद्रीनाथ है, ऐसे कई भगवान के पवित्र स्थान है, वहाँ पर जाकर निवास करना चाहिए। अपने रोज के कार्यों को छोड़कर कम से कम 2-3 दिन नदी में स्नान करना चाहिए। नदी में स्नान करने के नियम बताए हैं कि सवेरे उठकर सूरज उगने के पहले नदी में स्नान करना चाहिए, नदी में डूब कर रहते हुए भगवान के नामों को पुकारना चाहिए, जो भी आप कर रहे हैं निरंतर मुंह से भगवान के नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। ये मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है, सब ये हम खाली याद रखते नहीं इसलिए भूल जाते हैं। जब हम ब्रश कर रहे हैं, शेव कर रहे हैं, जो स्नान कर रहे हैं, तब हम फ्री है ना। अरे ब्रश में तो मुंह बंद है हमारा, लेकिन मन तो फ्री है ना, मन से आप बहुत सारी बातें सोच रहे हैं उस समय, वो सोच छोड़कर आप ब्रश करते समय भगवान के बारे में सोच सकते हैं। जैसे ही माउथ मुंह फ्री हो गया ब्रश करके तुरंत भगवान का नाम बोल सकते हैं। स्नान कर रहे हैं तो आप भगवान का नाम बोल सकते हैं, क्या डिफिकल्टी। ऐसे कहा गया है स्नान करते वक्त जरूर भगवान के नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि पानी और साबुन से हम चमड़ी को धो रहे हैं और भगवान का नाम मुंह से लेके आत्मा को साफ कर रहे हैं। चेतो दर्पण मार्जनम, जो हृदय का दर्पण है उसको भगवान के नाम से हम साफ कर रहे हैं। कि क्या गंदगी उसके ऊपर है, उसके अंदर विकार हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर द्वेष हिंसा, ये सब जो लोभ के विचार हैं ये हमारे ऊपर आत्मा के ऊपर धूल की तरह जमे हुए हैं दिमाग आत्मा के दर्पण पर, उसको हम साफ करते हैं रोज भगवान के नाम का लेकर। इसलिए अगर सही स्नान करना है तो साबुन और पानी के साथ में भगवान का नाम भी मुख से लेते रहना चाहिए, तभी हमारा स्नान सही हो जाएगा, वो पूर्ण स्नान हो जाएगा। उसको कहते हैं अभ्यंग स्नान, अभ्यंग मतलब अंदर बाहर से, सब बाह्य अभ्यंतर शुचि ही, बाह्य और अभ्यंतर दोनों से शुद्धि हो जाएगी हमारे जब हम भगवान के नाम लेकर स्नान करेंगे। फिर हमको शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। व्रत में कहा गया क्या कहा गया है, अगर आपको रोज भगवान का शास्त्र पढ़ने की आदत नहीं है तो इस महीने में आप कम से कम एक रकात, एक वर्ष, एक श्लोक पढ़ना आरंभ कर दीजिए। वो तो अधिक मास हो या ना हो, जल्द से जल्दी जब आपको समझ में आएगा तुरंत स्टार्ट, इट इज नेवर टू लेट। कोई ऐसा मुहूर्त नहीं होता इसके लिए, नहीं नहीं मैं एकादशी के दिन चालू करूंगा। अरे एकादशी तो जियोगे तो चालू करोगे ना, क्या गारंटी है कि अगला पल भी हम जिएंगे नहीं जिएंगे। आज अगर समझ में आता है तो वही पवित्र घड़ी है, जिस घड़ी में भगवान की याद आती है वही पवित्र मुहूर्त होता है, और कोई मुहूर्त नहीं है दुनिया में, बाकी सब कैलकुलेशन है स्टार्स के और इसके। लेकिन सही रूप से दिव्य दृष्टि से देखा जाए, शाश्वत रूप से देखा जाए तो वही पवित्र घड़ी है जिस घड़ी में हमको भगवान की याद आती है, उसके अलावा अन्य कोई पवित्र घड़ी की व्याख्या नहीं है। तो अगर उस पवित्र घड़ी जब भगवान की आपको याद आती है, अगर वो घड़ी वैदिक मास में आती है तो सोने पे सुहागा, इसलिए बता रहे हैं। अभी वो समय चल रहा है जिसमें अनुकूल वातावरण है, अनुकूल हवा बह रही है, अनुकूल दिशा में बह रही है, उसका लाभ लो, लाभ उठाओ उसका। अगर ट्रेन जा ही रही है विरार को, पकड़ लो उसको, वो चले जाओ अपने आप। अगर आप चल के जा रहे हो और आपको मिलता आ जाओ मैं लिफ्ट दे रहा हूँ आपको गाड़ी में, तो आप मत कहो कि नहीं मैं चल के जाऊँगा मेरे को चलने की आदत है, आप कहेंगे तुरंत जाना है तो बैठ जाओ गाड़ी में। अगर कोई अपने आप पूछ रहा है तो ना मत कहो, बैठ जाओ उसके अंदर तुरंत ही। उसी समय से आपको जाना है भगवान के पास और अधिक मास आ रहा है, चलो उसका लाभ ले लो तुरंत। इसको सही बिजनेस प्रवृत्ति कहते हैं। हम कैसा बिजनेस करते हैं, शरीर के ऊपर इतना खर्च करते हैं, इतना उसको सजाने के लिए, संवारने के लिए, आनंद देने के लिए महत्व करते हैं, और वो शरीर पूरे साधन के साथ में एंड में मर जाता है। सबसे वर्स्ट बिजनेस है ये, है ना। जिस शरीर को हमने बचाने का, संवारने का, सजाने का प्रयास किया है, वही शरीर 100% आपको छोड़ के जाने वाला है। इससे घटिया और घाटे का सौदा और क्या हो सकता है। लेकिन आत्मा जो है उसमें जो भी आप डालोगे, जो भी इन्वेस्ट करोगे, अनंत काल के आपके साथ में रहेगा वो, कोई समय का प्रभाव उसको नष्ट नहीं करेगा। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा बिजनेस है वो, केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट है उसके अंदर। एक नाम लो, दो लो, 10 लो, 15 लो, 1000 लो, 1,00,000 लो, आपके अकाउंट में जमा हो तो जाएगा। वो कहते हैं अक्षय खाता बोलते हैं उसको, जो खाते में कभी व्यय नहीं होता है, कभी क्षय नहीं होता है। क्या मतलब, क्या एक्सपेंस, कभी खर्च नहीं होता है। क्या कहते हैं मेरा भाई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मतलब राम का नाम का धन पाया है। कैसा धन है ये, ये धन जो है इसको प्राप्त करने पर कभी ये नष्ट नहीं होता है, खर्च ना छूटे, कोई इसका एक्सपेंस नहीं होता। 10 रुपया है, 5 रुपया दिया तो 5 बच गया, ऐसा नहीं होता है। 10 रुपया है, 5 दिया, 10 बच गया, उसके बाद 5 आ गया। 10 रुपया है, 10 दिया, आपके पास 10 है, मेरे पास भी 10 है। इसको कहते हैं डिवाइन मैथमेटिक्स, स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स। खर्च ना छूटे मतलब उसको देने से वो कम नहीं होता है। चोर ना लूटे, कोई भी आके ये धन लूट नहीं सकता है। खुले आम रखो आप, खुले आप बांटो, खुले आप गाओ भगवान का नाम, कोई आपको लूट नहीं सकता है उसमें। हाँ, एक था सोक्रेटिस था, उसको बांध के रखा था, मुंह बंद करके रखा था, फिर भी उसने कहा कि मेरे मन में जो भगवान का नाम ले रहा हूं उससे आप मुझे बंद नहीं कर सकते हो, है ना। आपका मुंह का नाक सब बंद करके रख दिया, फिर भी आपका भगवान का स्मरण कोई छीन नहीं सकता है आपसे। इज दैट राइट? जो आपका विचार करना है उसको कोई लूट नहीं सकता है, रोट नहीं सकता है। और दिन दिन बढ़त जाए, हमारा पैसा जो है अगर रख दिया कबड़ के अंदर तो वो कल दुगना नहीं होता है, चौगुना, उसको बैंक में डालना पड़ता है। लेकिन ये धन जो है अपने हृदय में रखा हुआ है आपने, और कहीं भी हमेशा बढ़ता रहेगा वो। दुनिया का धन जो है खत्म होते जाता है, आयुष्य खत्म होते जाता है, लेकिन आध्यात्मिक धन जो है कभी खत्म नहीं होता है। उस पर समय का प्रभाव नहीं है, समय के प्रभाव से वो नष्ट नहीं होता है, ऐसा ये धन है। इसलिए हमको विश्वास के साथ में उसको शुरू करना चाहिए, पवित्र घड़ी मानकर, तब जाकर जीवन हमारा सफल होता है। और ये व्रत जो है इसमें हमको इस महीने में शुरुआत करके या शुरुआत करना चाहिए या उसको बढ़ाना चाहिए, भगवान के विषय में चर्चा करनी चाहिए, भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए। और एक व्रत इसमें बताया गया है कि इस महीने में भगवान के भक्तों को घर बुलाकर उनको प्रसाद खिलाना चाहिए, प्रसाद खिलाकर उनको दक्षिणा देना चाहिए, खास करके ब्राह्मणों को। ब्राह्मण का मतलब जन्म से नहीं, जो कर्म से ब्राह्मण है। कर्म से ब्राह्मण कौन है? यजन याजन पठन पाठन, मतलब जो पढ़ाता है भगवान के विषय में लोगों को, खुद पढ़ता है और लोगों को पढ़ाता है, खुद भगवान के लिए यज्ञ करता है और दूसरों से करवाता है, और भगवान के विषय में लोगों को मार्गदर्शन करता है, जिसमें क्षमा है, शांति है, अर्जव है, आस्तिक्य है, हाँ श्रद्धा है भगवान के ऊपर, जो ज्ञानी है, भगवान के विषय में ज्ञान रखता है, लोभी नहीं है इस भौतिक दुनिया के भोग के लिए, वो व्यक्ति ब्राह्मण है। केवल ब्राह्मण कुल में जोशी और शानबाग कुल में जन्म लिए तो ब्राह्मण नहीं बनता है कोई। जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर नहीं जन्म से होता है, उसको अलग से पढ़ाई करके खुद डॉक्टर बनना पड़ता है। इज दैट राइट? नहीं नहीं, मैं डॉक्टर शानबाग का बेटा हूँ तो मुझे डॉक्टर दवाखाना खोलने दीजिए, मुझे लाइसेंस दे दीजिए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। उसी तरह से ब्राह्मण वो है जो ब्राह्मणों के गुण को अपना चुका है। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, भगवान कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो मैंने बनाए हैं वो गुण और कर्म के अनुसार बनाए हैं। क्या गुण है और क्या कार्य करते हैं उसके अनुसार ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाते हैं। केवल आडनाम से मतलब सरनेम से नहीं बनते। अरे सब ब्राह्मण लोग फिर आज शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जुआ खेलते हैं, व्यभिचार करते हैं, मतलब फिर भी हम ब्राह्मण हैं, हमारे धर्म में ऐसा ऐसा होता है, क्या फायदा है उसका, खाली ढोंग है सब कुछ ये। लेकिन अगर वो आडनाम से अगर शूद्र भी होगा लेकिन अगर उसके अंदर ब्राह्मण के गुण है तो वो ब्राह्मण है। भगवान ने कहा है, स्वयं कहा है, जिन्होंने ये रूल बनाया वो खुद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। जिन्होंने ये ब्राह्मण का रूल बनाया है वो खुद कह रहे हैं कि जो गुण से और कर्म से ब्राह्मण है वही सच्चे ब्राह्मण है। ऐसे भगवान के प्रामाणिक भक्तों को घर में बुलाकर सत्कार करते हुए भोजन देना है उनको, और उसके बाद दक्षिणा देनी है। और दक्षिणा का भी वर्णन किया है, क्या दक्षिणा देनी है उनको, शास्त्र देना है, भगवद्गीता या ऐसी किसी प्रकार का जिसमें भगवान के वचन लिखे हैं, उनको छतरी देना है, उनको जूते देने हैं, कुछ भी आपको जो इच्छा है, ऐसे नहीं कि सब देना है, जो भी आपकी क्षमता है, धन दे सकते हैं, फल दे सकते हैं, उनको प्रसन्न करना है, उनकी सेवा करनी है, सेवा भाव से। ये नहीं कि हमको प्रॉफिट मिलने वाला है, 1000 गुना प्रॉफिट मिलेगा, इस भाव से नहीं, उनको दिल से प्रसन्न करने का प्रयास करना है। ब्राह्मण सेवा, भक्त सेवा, वैष्णव सेवा कहते हैं उसको। तो ऐसे कई प्रकार के व्रत हैं यथाशक्ति हमको इस महीने में करना चाहिए। और कैसे इस व्रत का पालन करना चाहिए, जो आपने कोई भी व्रत ले लिया आपकी इच्छा से, मैंने बताया कि आपको ये कर सकते हैं, इसमें आपको जो भी कर सकते हैं आप अपने अपना लीजिए, उसको लिस्ट बना लीजिए कि मुझे ये करना है इस महीने में, ये मैं कर सकता हूँ, वो करना चाहता हूँ। उसमें एक ही गाइडलाइन है कि इसको करते हुए थोड़ा सा कष्ट हमको होना चाहिए, स्वेच्छा से थोड़ी तकलीफ तो होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई आराम से हो रहा है, ऐसा नहीं, थोड़ा सा कष्ट होना चाहिए। जैसे आपको समझो चावल का पुलाव बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा उसको नहीं खाने का प्रयास करना चाहिए, थोड़ा सा कष्ट जरूर होना चाहिए भगवान को सुख देने के लिए। उनकी विचारधारा, उनका भाव भावना बनाए रखने के लिए थोड़ा सा कष्ट जो है होना चाहिए। तपस्या की व्याख्या क्या है? स्वेच्छा से स्वीकार किया हुआ असुविधा, वॉलंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ इनकन्वीनियंस फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। तीन बातें उसके अंदर, एक स्वेच्छा से, एक असुविधा और एक भगवान के लिए, तीन बातें आवश्यक है। जब तीन बातें ये होती है तो ही उसको तपस्या व्रत कह सकते हैं हम लोग। और ऐसे कहा गया है कि जो पुरुषोत्तम मास में व्रत करता है वो व्रती के शरीर के अंदर भगवान अपने धाम के साथ निवास करते हैं। भगवान ने उस प्रसंग में उस मास को वादा किया था कि जो भी आपके पुरुषोत्तम मास के समय में व्रत करेगा मेरे लिए, उस व्यक्ति के शरीर के अंदर मैं निवास करूंगा मेरे सभी धाम के साथ। इतना पवित्र बनता है व्यक्ति, भगवान का निवास को अनुभव करता है। और अंत में जब हमारा 14 मई का दिन आएगा तो हमको उस दिन ब्राह्मणों को बुलाकर फिर उनको भोजन देकर इस व्रत का पारण करना है, फिर दोबारा जो भी है आपका जीवन चालू करना है। लेकिन जो भगवान का व्रत हमने आरंभ किया था उसको कंप्लीट छोड़ नहीं देना है, उसको आगे बढ़ाना है। बेसिक चीजें क्या है? 4-5 चीजें बेसिक है इसके अंदर। भगवान के लिए हम क्या कर सकते हैं? 64 तत्व बताए गए हैं, 64 प्रिंसिपल्स, उसमें से 5 प्रिंसिपल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बताए हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल क्या है? भगवान के नाम का जप करना, जितना हो सके उतना करना, सुबह शाम दोपहर जब समय मिले, उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हो सके उतना भगवान का स्मरण हमको करते रहना है। दूसरा है भगवान के भक्तों के साथ संग करना चाहिए। हर धर्म में कहा गया है, हाँ इस्लाम में देखते हैं हम जमात बताया है कि सब लोग एकत्र होकर नमाज पढ़ते हैं, घर में पढ़ सकते हैं लेकिन एकत्र पढ़ने का महत्व ज्यादा बताया है, इसलिए वो तुरंत भागते हैं मस्जिद में और सब लोग साथ में ही झुकते हैं भगवान को, अल्लाह को पुकारते हैं। क्रिश्चियन धर्म में मास बताया गया है, हाँ मास का मतलब संडे को मास है, बुधवार को मास है, मास मतलब एकत्र होना, मास मतलब सब इकट्ठा होना, एकत्र होकर वो भगवान को पुकारते हैं। और हम कहते सत्संग, एक ही बात है ना, वो सत्संग का मतलब क्या है? सत में जो संग होता है उसको सत्संग कहते हैं। सत कौन है? भगवान। सत के विषय में जो संग होता है वो भगवान है। ऐसा नहीं कि दो भक्त मिलकर टीवी देखने गए, पिक्चर देखने गए, घूमने गए तो सत्संग हो गया। नहीं नहीं मैं पिक्चर देखा, मैं भक्त के साथ देखा। नहीं, सत विषय में सत्संग जो होता है, संग होता है, उसको सत्संग कहते हैं। सत्संग वो है जिसमें रहने से भगवान की अधिक सेवा करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। आप जो आज कर रहे हो उससे अधिक करने की प्रेरणा प्राप्त होती है, तो वो सत्संग है। अगर भक्त सब मिलके बैठ गए और फिर शेयर बाजार में क्या चल रहा है और IPL में क्या चल रहा है और अमेरिका के स्विस बैंक में इधर उधर क्या चल रहा है, कहां से पैसा कहां जा रहा है, नहीं हमने सब भक्तों के साथ बैठकर चर्चा किया तो सत्संग नहीं है। भक्त भी होंगे तो भी विषय सत्य का होना चाहिए, तो वो सत्संग माना जाता है। दूसरी बात क्या है? सत्संग। और तीसरा क्या है? भगवान के विषय में जो ज्ञान प्राप्त है ग्रंथ के रूप में, उसमें चर्चा, जैसे कुरान है या बाइबल है, श्रीमद् भागवत है या भगवद गीता है, उसके अनुसार उसके विचारों के प्रति चर्चा करना, परामर्श, विचार परामर्श करना। और चौथी बात है भगवान के विग्रहों की सेवा करना। भगवान हमारे लिए बहुत प्रेम से स्वरूप धारण करके आए हैं, उनकी पूजा करना। और पांचवा बताया गया है कि भगवान के धाम में निवास करना। अभी आप बोलेंगे हम तो बंबई में हैं, हम कहाँ धाम में निवास करते हैं, तो धाम का निवास 4 प्रकार का होता है। एक, कोई व्यक्ति धाम में ही जन्म लिया है भगवान की दया से, हो सकता है कोई मक्का में जन्म लिया हो सकता है कोई वृंदावन में जन्म लिया हो, जन्म से उसका जन्म ही उधर हो गया है तो वो धामवासी हो गया। दूसरा ऐसा धामवास है कि आप में से कोई भी व्यक्ति सब रिटायर होकर वहीं घर बना लिया जहाँ पर भगवान का धाम है, हो सकता है ना, परमानेंट नौकरी भी वहाँ ले लिया और घर बसा लिया, तो आप भी धाम वास कर रहे हैं। तीसरा है कि साल में कुछ दिन हम जहाँ जाते हैं छुट्टी निकाल कर 15 दिन में सब कुछ छोड़कर भगवान के धाम में अपने आप को समर्पित करने के लिए चले जाते हैं, उसको कहते हैं यात्रा, हाँ पिलग्रिमेज कहते हैं उसको इंग्लिश में, तो वो भी धाम का वास है। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप धाम के बारे में सोच सकते हैं, मन से धाम में रह सकते हैं, वो सबसे बड़ा धाम वास है। हाँ अगर धाम में आप रह रहे हैं, बम्बई का सोच रहे हैं, बहुत लोग सोचते हैं अरे प्रभु जी क्या है आपका बम्बई कितना बढ़िया है, वृंदावन में क्या रखा है, कुछ है नहीं, यहाँ पर जो भी कुछ है बम्बई में है, हमको बम्बई ले चलो प्रभु, बम्बई ले चलो, तो वो वहाँ पर रह के भी वहाँ नहीं है, वो उसका माइंड पूरा बम्बई में है। और अगर कोई वहाँ जा चुका है 15 दिन के लिए और उसको इतना अच्छा लगा, वो इतना प्रभावित हो गया वो कि यहाँ पर आने के बाद भी उसको उसी के विचार चल रहे हैं, तो यहाँ आने के बाद भी वो धाम में ही है। तो इस प्रकार का धाम वास आप सबको मुमकिन है कि नहीं? साल में कुछ दिन जाइए आप धाम के निवास करने के लिए और वहां पर ऐसा निवास कीजिए क्या आपको घड़ी घड़ी की याद रहेगी उस कैसे आपने वहां समय बिताया, कैसे दर्शन किया, कैसे नदी में स्नान किया, क्या क्या सुना वहां पर, किसके किसके संग में कहां कहां गए, वो सबको बहुत गहराई से आप समझेंगे और उसी को याद करते रहेंगे, या जहां पर वो गए थे उनको मिलकर उसके बारे में चर्चा करते रहेंगे, तो आप धाम में ही है। या धाम की मंदिर जो लीला होती है भगवान की, जो भगवान ने वहां पर कार्य किया है, उन लीलाओं का चर्चा आप यहां बैठ के करते हैं तो भी वो धामवासी है। हाँ, इतनी पावर है उसके अंदर। भगवान तो अभी हमारे सामने उपस्थित मूर्ति के रूप में है, लेकिन उनके नाम के रूप में हृदय में बैठे हुए हो, उनका संग हम हृदय में बैठ के कर सकते हैं। ट्रेन में है, बस में है, गाड़ी में है, काम में है, घर में है, कहीं पर भी आप उनके साथ रह सकते हो उनकी याद करके, वैसे ही धाम है उनका। तो ये पांच चीजें मैंने बताई आपको, भगवान का नाम, भगवान के भक्तों का संग, भगवान के ग्रंथों की चर्चा, भगवान के विग्रहों की सेवा और भगवान के धाम का वास। ये हमको चिरंतन करना है। कुछ चीजें ऐसी होती ना, हम आपको बोलेंगे आपको अच्छी तरह सांस लेना है, साहब शाम तक लेना है कि सुबह तक लेना है, नहीं लाइफ लॉन्ग लेना है। सांस और धड़कन जो होती है ना वो लाइफ लॉन्ग चलती है, उसको कोई ब्रेक नहीं होता है कि भी, इसलिए भगवान के नाम के जप में कोई खंड नहीं होना चाहिए। चलो संडे है ना, आज हॉलीडे है, भगवान के नाम का जप आज ऑफ कर देंगे, बहुत पाँच दिन जप कर लिया, अब एक दिन छुट्टी लेंगे। उससे छुट्टी हम अपने शरीर के काम से लेते हैं, शरीर को पालने के जो काम है उससे हम छुट्टी लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन पूरा भगवान के लिए अर्पण करने के लिए, लेकिन जब शरीर के लिए पैसा कमाने के लिए काम करते हैं उस दिन भी सुबह और शाम को भगवान का भजन करते हैं। इज दैट राइट और नॉट? कुछ चीज़ें आवश्यक होती हैं, उनको कम मात्रा में क्यों ना हो, करना ही चाहिए। तो इस तरह से हमको मनुष्य जीवन को सार्थक करना है तो भगवान के नाम का जप आवश्यक है। जिस तरह से हमारा पुरुषोत्तम मास का जो वर्णन है वो समाप्त होता है, और इसमें कोई प्रश्न आपके है तो आप पूछ सकते हैं। किस तरह से इस व्रत को करना है, अगर सबको समझ में आया है, अभी आज कम से कम 9 दिन खत्म हो गए उसके, 15 अप्रैल को शुरू हुआ था, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 11 दिन खत्म हो गए। कोई बात नहीं, अभी भी आपके हाथ में 19 दिन है, एक एक क्षण के अंदर भी आप बहुत अच्छी अच्छी प्राप्ति कर सकते हैं, बहुत श्रेष्ठ प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान के विषय में कोई देर नहीं है, जब समझ में आया, जब याद आया, जब मालूम पड़ा, तुरंत उसको फॉलो करना चाहिए, इमीजिएटली। हाँ, तो आप सबको मैं विनती करता हूँ कि इस अनोखे समय का आप लाभ लीजिए, जितना हो सके उतना घर में रहकर भजन कीजिए, हो सके तो छुट्टी निकाल कर नासिक जाइए या बाणगंगा जाइए, मुंबई में भी एक धाम है जहाँ, पता है ना आपको स्टोरी क्या है उसकी, मुंबई भी, मुंबई का नाम जो है ना वो पड़ा कैसे है, मुंबई मतलब मुंबा देवी का ये स्थान है, मुंबा देवी जो है वो पार्वती का स्वरूप है, इसलिए वो पवित्र स्थान है। उसका और एक नाम भी है, कृष्ण द्वैपायन क्षेत्र, ये मुंबई का वर्णन है, ये स्पिरिचुअल नेम मुंबई का है। तो यहाँ पर ये लीला हुई है कि जब भी प्रभु रामचंद्र वनवास में थे और सीता जी को खोज रहे थे और दक्षिण दिशा में यात्रा कर रहे थे, अयोध्या से उनका वनवास प्राप्त हुआ है ना, अयोध्या से वो दंडकारण्य में गए, दंडकारण्य जो है वो अयोध्या से दक्षिण दिशा में आरंभ होता है और कई सैकड़ों मील तक दंडकारण्य है, और दंडकारण्य का जो एंड है मतलब थोड़ा सा जगह बचती है वो नासिक है, जहाँ पर वो अपने 14 साल के वनवास के 14वें साल पे आए वहाँ पर, और वहाँ पर 13 साल वनवास करने के पश्चात 14वें साल में रावण ने सीता का हरण कर दिया, और फिर उसके बाद में वो दक्षिण दिशा में खोजते हुए नीचे नीचे चले आए, और उसके दक्षिण दिशा में मुंबई है। तो जब लक्ष्मण और राम उसको खोजते खोजते आए तो कृष्ण द्वैपायन क्षेत्र यानी मुंबई आए, तो वो पहाड़ पर चढ़े, पहाड़ पर मतलब मलबार हिल, हाँ बहुत पवित्र जगह है वो, आज सब मिनिस्टर लोग वहाँ रहते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं वहाँ पर रहके हुए, लेकिन वो पवित्र स्थान है बहुत, इससे याद रखना आप। तो उस पर जब चढ़े तो दोपहर का समय आया, मध्यान्ह का समय बोलते हैं उसको, और जो ब्राह्मण होते हैं जो जनेऊ पहनते हैं जो गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तो सवेरे करते हैं, भोर के समय, मध्यान्ह में करते हैं और संध्या के समय करते हैं। तो जब मध्यान्ह की संधि यानी कि जप करने का समय आया गायत्री, तो उनको आचमन करना जरूरी है, अपने आप को शुद्ध करने के लिए वो कृष्ण केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण नमः, गोविंदाय नमः, वो आचमन करते हैं पकड़कर, और फिर वो जप अपने जनेऊ के धागे पर ध्यान करके वो करते हैं गुप्त रूप में। तो उसको शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। तो जब रामचंद्र ने देखा कि मुझे गायत्री का समय हो गया है, मुझे मध्यान्ह गायत्री करनी है, लेकिन सब जगह खारा पानी है समुद्र का, तो उसने लक्ष्मण को कहा, उन्होंने कि हे लक्ष्मण, मुझे शुद्ध जल की आवश्यकता है, इसी जगह पर गंगा को प्रस्तुत करो, उत्पन्न करो। तो लक्ष्मण ने गंगा जी का मंत्र बोलकर जो बाण मारा पहाड़ पर, तो पहाड़ से गंगा जी का निर्माण हुआ। इसलिए क्या नाम पड़ा? बाण गंगा। जो बाण से उत्पन्न की गई है, आज भी आप जाएंगे वहां पर पत्थर के अंदर से स्रोत है पानी का, और आप ग्लास लीजिए, हाथ से लीजिए और पीजिए, एकदम प्योर वाटर, जो तुम्हारे बिस्लरी किंसले है वो सबको खराश कर देगा। हाँ, अभी भी जाइए, आप कभी भी जाइए, एनी टाइम यू गो एंड सी, सब जगह खारा पानी है। और पहाड़ में कोई ऐसा पानी का कोई गुंजाइश हो सकता नहीं ना, पत्थर में भी पानी होता है, लेकिन उस पत्थर में भी एक जगह से निरंतर पानी बह रहा है और उससे बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है। फिर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी के द्वारा योजना करने के पश्चात पानी निर्माण किया और आचमन किया और वहाँ पर अपना गायत्री जप किया। उसके बाद रामचंद्र प्रभु जी वहाँ से निकले उत्तर दिशा की ओर, मतलब अंधेरी दादर इस तरफ बढ़े हैं, और यहाँ से वो नलासोपारा के एरिया में गए हुए हैं और वहाँ से वो आगे गए हैं। तो इस भूमि पर भी भगवान के चरण चिन्ह लगे हुए हैं, जहाँ पर भगवान के चरण लगते हैं वही पवित्र स्थान है। बाद में हम भ्रष्ट आचार करके उसको दूषित कर देते हैं, वो बात अलग है, लेकिन उसका मूल पवित्र नष्ट नहीं होता है। जिसको पता है उसको इस पवित्रता का अनुभव होता है। इसलिए अगर आपको समय है, आप बाणगंगा जाइए, उसमें आप स्नान कीजिए, वहाँ बैठकर आप जप कीजिए, क्योंकि बाणगंगा और मूल गंगा अलग नहीं है। उसमें स्नान करने से आपको गंगा जी में स्नान करने का लाभ मिलेगा। श्रद्धा है तो सब लाभ उपलब्ध है। बोलेंगे गंदा है सब, यहाँ पर क्या है, हमने स्नान नहीं थोड़ी करेंगे, यहाँ पर हम लोग ऐसा स्नान नहीं करते हैं, ऐसा बोलेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा उसका। या समय है तो नासिक चले जाइए, समय है तो वृंदावन चले जाइए, जमुना में स्नान कीजिए। हाँ, लेकिन करना चाहिए जरूर। और अगर समय नहीं है बिल्कुल, तो जो जा रहा है उसको बोलना पानी लेके आना और तीन तीन बूंदी सर पर डालते रहना रोज श्रद्धा से, उसके आचमन करना घर में बैठ के। सब प्रकार की सुविधा बनाई गई है। हाँ, जिसको करना है उसके लिए बहुत रास्ते हैं, जिसको नहीं करने का बहाना देना है उसके लिए बहुत बहाने भी हैं। हमारा उद्देश्य क्या है कि भक्तिवेदांत अस्पताल में जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, मरीज के रूप में हो, रिश्तेदार के रूप में हो, हाँ कोई पेशेंट है, साइकेट्री के है, इसके है, उसके है, बच्चों के पेशेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कुछ आप हमारे लिए लकड़ी बेचने आते हो या दवाई बेचने मेडिकल कंपनी की ओर से आते हो, हाँ जो भी व्यक्ति यहाँ पर हमारे संपर्क में आएगा उसको भगवान के विषय में जानकारी कराना हमारा फर्ज है। हमारी कोशिश ये है कि आप सब लोग गंभीरता से अपने जीवन में भगवान की भक्ति को अपनाएं। मरीज के रूप में हमारे पास आए, आपने इलाज करवाया, शरीर को ठीक कराया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, उस बहाने से आए, लेकिन उस बहाने से आपको भगवान से परिचय कराना की योजना यहाँ पर बनाई गई है। नहीं तो स्नेह मिलन करने की जरूरत क्या है? हाँ, ये न किन प्रकार है आपको उत्साह देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, थोड़ा बहुत क्यों ना हो आपकी भगवान के विषय में प्रगति कराने के लिए ये सब प्रोग्राम बनाए गए। इसमें कोई चार्ज लेते नहीं हम लोग, है ना, यही उम्मीद करते हैं आपसे। आप आइए, समय बिताइए यहाँ पर और कुछ लाभ लीजिए, क्योंकि जीवन में अंत में हम धन कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, विद्या इकट्ठा करेंगे, पोजीशन प्राप्त करेंगे, प्रमोशन मिलेगा, आगे बढ़ेंगे, लेकिन सब कुछ छोड़कर हमको जाना है एक दिन, ये बात हमको भूलना नहीं चाहिए कभी भी। सब कुछ छोड़ना है, एक भी चीज़ हमारे साथ नहीं जाएगी, केवल जो आत्मा के स्तर पर हमने बटोरा है वही हमारे आत्मा के साथ जाएगा। शरीर नष्ट हो जाएगा और शरीर के स्तर पर जो प्राप्त किया है वो शरीर के साथ नष्ट हो जाएगा। आत्मा अमर है, वो आगे बढ़ती रहेगी, और आत्मा के साथ जो चीज़ हमने प्राप्त किया है वो आत्मा के साथ चली जाएगी। वेरी सिंपल लॉजिक है ना, बहुत सिंपल है। जो हमारा है हमारे साथ जाएगा, जो हमारे शरीर का है शरीर के साथ नष्ट हो जाएगा, या तो दफनाया जाएगा, या तो जलाया जाएगा, या तो गिदड़ को खिलाया जाएगा। इसकी इतनी वैल्यू है और कुछ नहीं है। या तो उसका स्टूल बनेगा गिदड़ का, या तो राख बनेगा, या तो पृथ्वी बन जाएगा, मतलब अर्थ बन जाएगा, मट्टी बन जाएगा दफनाने के बाद। यही हमारे जीवन का अंजाम है, इससे कोई बच नहीं सकता है। इसलिए इस जीवन का अगर भगवान के विषय में प्रगति है तो ही इसका लाभ है। तो बारह हमारा सारा पोजीशन व्यर्थ है, एक्चुअली द्विपद पशु है। हाँ, सब जीवन व्यर्थ है हमारा। हम सुंदर शरीर पर गर्व करते हैं, हमारी विद्या पर गर्व करते हैं, धन पर गर्व करते हैं, ये सब गर्व करने वाली वस्तु जो है वो हमको छोड़ के जाने वाली है एक दिन। हमारे जो है ना पॉलिटिशियन दिखते हैं ना, कभी टमाटर फेंकते हैं, कभी हार डालते हैं उनके ऊपर। जो हार से आसक्त हो गया टमाटर पड़ने पर दुखी हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए इस दुनिया का मान सम्मान के ऊपर ज़्यादा अटैचमेंट रखना नहीं चाहिए, इस दुनिया के धन के ऊपर ज़्यादा भरोसा रखना नहीं चाहिए। वो आज है तो कल नहीं है, लेकिन भगवान का नाम चिरंतन है। उसका एक बार आप आश्रय लोगे, उसको एक बार पकड़ लोगे, तो वो आपको छोड़ेगा नहीं कभी। लेकिन धन जो है वो केवल छोड़ने के लिए आपके पास में आता है, सुख जो है वो केवल आपको दुखी करने के लिए आपके पास में आता है। जितना सुख अधिक आता है उतना हम उसको सुख ना मिलने पर बहुत दुखी हो जाते हैं। इसलिए आसक्त नहीं होना चाहिए हमको, केवल आसक्त जो है भगवान के चरणों में होना चाहिए। इसी के लिए कार्यक्रम बनाया है। हाँ, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।